ఓం శాంతి. పరివర్తన్ కే పథ్ పర్ కి ఇస్ కడీ మే ఆజ్ హమారే బీచ్ సబ్సే వరిష్ఠ ఔర్ ఇస్ ఆధ్యాత్మిక్ జగత్ కే ప్రణేతా హమ్ సబ్ కో సదైవ్ ప్రేరణా దేనే వాలీ జీవనదాతా భాగ్య విధాతా ఐసే దీదీ జీ, आज की इस कार्यक्रम में आपको हम आपके बचपन की ओर ले जाएंगे. दीदी, आपका बचपन कैसा था? क्योंकि हम सबको अपने बचपन की स्मृतियां सदैव बनी रहती है, बचपन की यादें ताजा रहती है. और कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना. तो दीदी, हम पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता, किस तरह की रुचि आपको थी, किस तरह का परिवार का परिवेश था और माँ बाप का आपके प्रति क्या दृष्टिकोण था?
हम परिवार में 9 भाई बहने थे, 7 बहने 2 भाई. और परिवार हमारा धार्मिक था, वैष्णव. हमारी दादी तो इतनी पक्की वैष्णव थी, जो ट्रेन से आए, बाजार से आए तो स्नान करके कपड़े बदल लेकर पीछे घर में चलती थी. और हम लोग भी, बच्चे भी माँ बाप के साथ लक्ष्मी नारायण के टेंपल में, शिव के टेंपल में और सत्संगों में जाया करते थे. और पढ़ाई में मैं होशियार थी, हमेशा 5 के अंदर नंबर आता था. तो हमें हर साल अच्छा नंबर लेने के लिए पिताजी कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे, कभी पेन है, कभी साइकिल है, कभी क्या कभी क्या. और परिवार सुखी था, आपस में प्यार था. और हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने क्या किया कि बिजनेस में उसको 90% टैक्स भरना पड़ता था. तो इसलिए उसने क्या किया, उसका सारा बिजनेस हम बच्चों के नाम पर, हम सभी पार्टनर, हमारी माँ, हम सब भाई बहने, हमारी भतीजी भाभी, सब पार्टनर. तो क्या हुआ कि उसका ये ख्याल था कि बच्चों की शादी में खर्च करना पड़ेगा तो ये उनका पैसा है, बच्चों का अलग अलग पहले से हो गया. तो जब हम बच्चे थे, हमको पिताजी ने साइकिलिंग सिखाई, ड्राइविंग सिखाई, स्विमिंग के लिए हमको, हम कांदीवली रहते थे, स्विमिंग पूल था 1 घंटे की ट्रेन पर, मरीन लाइंस पर. तो हम लोग स्विमिंग पूल में जाते थे. और घर में भी सिलाई सिखाने के लिए हमको दिया, और हारमोनियम सिखाने के लिए भी एक टीचर आती थी. तो पिताजी को शौक था सब कुछ सिखाने का बच्चों को. तो जब हमने मैट्रिक पास की 16-17 साल की, तो क्या है कि हमारी सब बहनों की 17 साल में सगाई की और 19 साल तक शादी भी कर दी थी. तो हमारे लिए लड़का ढूंढने लगे. तो मैंने कहा कि पिताजी, यदि आपको मुझे डॉक्टर बनाना है तो शादी की बात नहीं करो अभी, क्योंकि पढ़ाई और शादी दोनों साथ में नहीं चलती हैं। क्योंकि 1955 में पहले सगाई करते हैं, फिर कहते हैं जल्दी जल्दी शादी करो, और शादी करो तो नेचुरली है बहू को सब स्थान पर भेजेंगे, आज इसकी शादी है, आज फलाना है, आज ये है, आज वो है, पढ़ाई रह जाती है। इसलिए 17 साल की उम्र में हमने कहा या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या तो शादी करूंगी, और मैं पढ़ाई में होशियार थी तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है तुम पढ़ाई कर। और वो सोशल वर्कर थे, बिजनेसमैन थे, और काफी दान पुण्य आदि करते रहते थे। तो संजो हमारे घर में एक समय हम 8 भाई बहने, माँ बाप, हमारा चाचा, हमारी दादी, 2 नौकर, 1 नौकरानी, संजो करीब 13 का भोजन बनाना पड़ता था। तो हमारे पास एक रसोई करने वाली माता भी थी, परंतु उसको जब पीरियड आता था तो हम बहनों को 13 जनों का खाना बनाना पड़ता था। तो मतलब सब कुछ सीखा, क्योंकि छुट्टियों में घर में अनाज साफ करना होता था, अचार बनाना होता था, पापड़ बेलने पड़ते थे, सब बहनें मदद करती थी। तो इसलिए बचपन से सब कुछ सीखा और साथ साथ पढ़ाई भी की। और क्या होता था कि हर सैटरडे संडे हमारा कुछ प्रोग्राम होता था। मेरे पिताजी फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर थे तो हर सैटरडे फिल्म में जाना होता था, सारा परिवार कम से कम 5-6 जने जाते थे। तो हर सैटरडे फिल्म देखना है, हर संडे बीच पर जाना है। हमारे पिताजी को क्लासिकल म्यूजिक का भी शौक था, तो कभी म्यूजिक कॉन्सर्ट में हम लोग जाते थे। उनको बॉक्सिंग का भी अच्छा शौक था तो हम सभी बॉक्सिंग में भी जाते थे। तो हर वीकेंड में कुछ न कुछ होता ही था। और स्कूल की छुट्टियों में हमारे पिताजी को भी 1 मास की छुट्टी होती थी काम से, तो कभी पूना, महाबलेश्वर, माथेरान, देवलाली, नासिक आदि आदि।
दीदी आपका बचपन हम काफी जान गए, हम सोचते थे हम ही लोग फिल्म देखते थे, लेकिन हमें पता चला आप भी फिल्म देखती थी उस जमाने में भी। दीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आपको ज्ञान कब मिला और उस समय आपकी आयु क्या थी, और ज्ञान की कौन सी बात ऐसी अच्छी लग गई जो आप बाबा के ज्ञान से जुड़ गई?
हमने मेडिकल पास कर लिया था और 62 में मम्मा बंबई में 9 मास रही। तो 62 में जब मम्मा बंबई थी तो हर संडे वो क्लास कराती थी पब्लिक के प्रोग्राम के लिए। तो उषा रमेश ज्ञान में आ गए थे और उषा हमारे साथ फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी थी, तो हमारी फ्रेंडशिप चालू रखी थी। वो बीएससी किया, मैंने मेडिकल किया, परंतु हमारी फ्रेंडशिप चालू थी। तो जब मम्मा बंबई में थी उसने हमें निमंत्रण दिया, तो पहले दिन ही मम्मा का प्रवचन सुना। और मम्मा के प्रवचन के पहले हम कुछ थोड़े लोग 4-5 जने हैं जल्दी पहुंचे थे, तो निर्मल शांता दादी ने बैठकर हम सभी को ज्ञान की बातें शुरू की, पवित्रता की बात की। मुझे मम्मा का प्रवचन तो याद नहीं है, पर निर्मल शांति का दादी का बरोबर याद है, वो पवित्रता की बात उसने की। तो वो संडे था, तो मम्मा का प्रवचन पूरा हुआ तो उषा कहे कि तुम कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है, कल से कोर्स शुरू कर दिया। और हमें ये बात अच्छी लगी क्योंकि मैंने मेडिकल स्टडी उसी लिए लिया था कि मैं समाज की सेवा करूं। और फिर ज्ञान में हमको समझ में आया पवित्रता अच्छी है। और उस समय तक हमने शादी नहीं करनी थी और करनी भी नहीं थी। मैंने सोचा शादी करूंगी तो ऐसे के साथ करूंगी जो हमारे साथ गांव में चले, क्योंकि बम्बई में तो बहुत डॉक्टर हैं, बम्बई में प्रैक्टिस करके क्या करेंगे। तो इसलिए शादी नहीं की थी। और हमारे पिता माँ बाप भी बिजी थे अपने नौकरी धंधे में आदि, तो उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया लड़का ढूंढने का, कुछ उन्होंने न किया न हमने किया। तो फिर ये पवित्रता की बात भी अच्छी थी और रूहानी सोशल सर्विस करने का भी इसमें मौका मिलेगा। तो इसलिए हमने ज्ञान में चलना शुरू कर दिया क्योंकि धारणा की बातें हमको अच्छी ही लगी।
दीदी, आपका पहली बार मधुबन कब आना हुआ, कौन से वर्ष में, और आपने साकार बाबा को जब देखा तो उस समय संसार से एक अलग छवि बाबा ने क्या देखी?
तो ब्रह्मा बाबा से हम पत्र व्यवहार तो करते रहे क्योंकि उन दिनों में जब ज्ञान में कोई चलने लगता है तो उसको कहेंगे अपना परिचय लिखो, मैं बाबा आपकी बच्ची बनी हूँ अपना परिचय लिखो। तो मैं समझती हूँ 15 दिन के अंदर हमने पत्र लिखा। रतन मोहिनी दादी आती थी तो हमारे अपना पासपोर्ट फोटो और अपनी कर्म कहानी भी लिखकर भेजी। तो बाबा से पत्र व्यवहार तो होता रहता था और बाबा के बारे में बातें तो सुनते रहते थे। तो फर्स्ट टाइम 1964 में मैं मधुबन में आई। तो उस समय क्या था कि 64 में हमारी छुट्टियां थी और दादी निर्मल शांता उस समय यूपी पंजाब का टूर पर जा रही थी, तो उसमें मैं भी शामिल हुई और हमारा अंतिम स्टॉप था मधुबन। तो पूरा चक्कर लगाकर यूपी पंजाब का चक्कर लगाकर हमारा प्लान था दिल्ली आगरा जयपुर और मधुबन आने का। परंतु हम लोग जलंधर में थे और मालूम पड़ा ये मम्मा बम्बई आई है, मम्मा को कैंसर है, तो इसलिए हमारा बीच का बंद करके, क्योंकि निर्मल शांता दादी उस समय बम्बई की इंचार्ज थी और मम्मा बम्बई में आई थी, तो इसलिए हम लोगों ने टूर आधे पर बीच में दो चार शहर छोड़ दिए और आबू आए और आबू में ब्रह्मा बाबा से मिलने हुआ। तो जैसे पहली बारी मिले तो ऐसे नहीं लगा कि कोई पहली बार मिली हूँ, जैसे कि हमारा पुराना रिश्ता है। और उन दिनों में मम्मा बाबा से पर्सनली मिलना बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे हम आते हैं आकर मिलते हैं, पहले ही स्नान करके बाबा से मिलने जाते हैं और निकलने के पहले बाबा से गिफ्ट लेते हैं, दूसरी बारी गिफ्ट लेने मिलता मिलने हैं, तीसरी बारी छुट्टी लेने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे बाबा से मिलना हुआ। और मम्मा को पहले मैंने जब मिली तो मम्मा से मैंने पूछा कि मम्मा मेरा विचार नहीं है मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं सरेंडर हो जाऊं। तो मम्मा ने कहा नहीं, तुम ब्रह्मा बाबा से जब मिलो ब्रह्मा बाबा से पूछना। तो मधुबन में जब पहली बार आए तो मैंने पूछा ब्रह्मा बाबा से कि मैं सरेंडर हो जाऊं, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है, जिस्मानी और रूहानी, अपनी प्रैक्टिस जरूर करो। फिर दूसरा प्रश्न हमको ये था, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी चाहते थे कि मैं बंबई में जहां हम लोग रहते थे उसी एरिया में अपना मैटरनिटी होम खोलू। और मेरी विचार थी कहां गांव में जाके सेवा करूं। तो मैंने बाबा से पूछा मैं क्या करूं। तो बाबा कहता है कांदीवली भी तो गांवड़ा है ना, क्योंकि कांदीवली मेन शहर से सीबीडी से करीब 20 मील दूर है। तो कहा वहीं शुरू करो। तो फिर मैं ब्रह्मा बाबा से राय सलाह लेती रही क्या करना है, क्योंकि लौकिक पिताजी ने तो समझो प्रपोज किया, परंतु मुझे डिसाइड करना था मुझे क्या करना है। तो मैंने फिर कांदीवली की प्रैक्टिस शुरू की।
दीदी आप कौन से वर्ष में संपूर्ण रूप से समर्पित हुई बाबा के यज्ञ में, और उस समय किसी प्रकार का कोई विरोध का सामना तो करना नहीं पड़ा आपको?
तो कांदीवली में हमारा जन्म हुआ, वहां ही डिस्पेंसरी शुरू की। और क्या हुआ कि उस समय सिर्फ दो सेंटर थे ज्ञान में आई तब, एक वाटरलू मेंशन बंबई में, एक सायन। तो रमेश भाई ने हमको कहा कि आप जरा कांदीवली के तरफ बोरीवली के तरफ देखो मकान कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे दोनों सेंटर फ्लैट में थे। और रमेश भाई की ये इच्छा थी कि फ्लैट में सेंटर वो आश्रम की फीलिंग नहीं देता है, इसलिए रमेश भाई ने हमको कहा वहां देखो मकान की क्या प्राइस है। तो मैंने सोचा कि मेरी बहनों को हमारे पिताजी ने शादी में फ्लैट दिया और मेरा भी पैसा है हमारे पिताजी के पास, और हमारे पिताजी का मकान था उसके पीछे जमीन का प्लॉट था। तो मन में सोचा क्यों नहीं मैं उस प्लॉट के लिए लौकिक पिता से मांग करूं। परंतु लौकिक से पूछने के पहले हमने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि मैं मांगू। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम्हारा लौकिक पिता जमीन देगा तो अलौकिक पिता मकान बना देगा। तो हमने पिताजी से पूछा तो पिताजी कहे लड़की इतना नजदीक रहे अच्छा नहीं है, तुम अपना दूसरा फ्लैट ढूंढो मैं पैसा दूंगा। तो उसने तो उस समय 364 में कहा 20,000 दूंगा फ्लैट ढूंढो। तो हमने ढूंढना शुरू किया कांदीवली मलाड बोरीवली समझो तीन सबब में मकान ढूंढना शुरू किया। तो जब डिस्पेंसरी कांदीवली में शुरू की तो हमने कहा मकान भी कांदीवली में ही होना चाहिए। तो उन्होंने तो 20 का मार्जिन दिया था परंतु मैंने 40 खर्च किया, क्योंकि दो फ्लैट लेना पड़े ना। एक फ्लैट तो वहां तो उस समय कितना छोटा होता है, 12x14 मोस्टली सिटिंग रूम, तो क्लासरूम तो बड़ा चाहिए ना, तो इसलिए दो फ्लैट का हमने एक फ्लैट किया, एक फ्लैट का पूरा हॉल बताया और एक फ्लैट में एक बेडरूम, एक सिटिंग रूम, किचन। तो वो जब बनकर तैयार हुआ तो मैं वहां रहना शुरू किया और बाबा ने शुरू से हमको एक माता दी जो किचन वगैरह का देखभाल करे, क्योंकि मैं तो डिस्पेंसरी में जाना होता था 9 से 12, शाम को 6 से 9, तो इसलिए एक माता दी और एक टीचर मैन, वो दो हमारे साथ सदैव कांदीवली में रहे।
दीदी मैंने कहा कि
66 में हमने शुरू किया रहना,
उसी समय आप समर्पित हो गई दीदी
सीधा सेंटर।
अच्छा, हम सबको ये जानकर खुशी होती है कि साकार बाबा के समय पहला मकान दीदी जी के पिताजी ने संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बाबा को मकान बना करके दिए, पहला मकान दीदी के नाम से शुरू हुआ था। दीदी हम थोड़ा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साकार बाबा अव्यक्त हुए, उस समय आप कहाँ थी, आपको कैसे जानकारी मिली? और हम सब जानते हैं अधिकांश हम बाबा को साकार में देखा नहीं है, मम्मा को नहीं देख पाए। आप सबका बहुत प्यार था, जिगरी प्यार था बाबा से, तो जब समाचार मिला तो किसी प्रकार का कोई दुख फील हुआ दीदी?
जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, तब तो मैं घर में थी, तो उस समय पुष्प शांता दादी ने फोन करके समाचार दिया और उस समय मम्मा के अव्यक्त होने पर काफी लोग जैसे रमेश भाई, उषा बहन, कई दादियां सब फौरन दूसरे दिन की पहली ट्रेन पकड़ करके निकल गए। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए रात को 9:30 मैं समझती हूँ, हमारे पास फोन आया ब्रिजेंद्रा दादी का, क्योंकि उस समय दादी प्रकाशमणि इंचार्ज थी मुंबई की और प्रकाशमणि दादी उस समय मधुबन में थी, तो ब्रिजेंद्रा दादी महाराष्ट्र इन जोन थी, जोन इंचार्ज थी, तो उसने रात को 9:30 के करीब फोन किया, कहा निर्मला ड्रामा पर अडोल है। फिर समाचार सुनाया कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं, तो उस समय मेरे साथ कला दादी और उषा की भांजी आशा, वो दोनों रहते थे, तो हम योग में बैठ गए और उन दोनों ने तो निश्चय कर लिया हम तो कल सवेरे की पहली ट्रेन पकड़ कर जाएंगे, और मैंने कहा कि हम सब चले जाएंगे तो सवेरे समाचार स्टूडेंट को कौन देंगे, इसलिए बाकी सब मेजॉरिटी टीचर्स बंबई की चली गई, एक मैं रही और बंबई में शील दादी रही, वो नहीं निकली, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि कोई तो यहां रहे ना, सवेरे सबको समाचार देंगे, सबको कितना शौक होगा, तो इसलिए हमारे आंख में 1-2 आंसू आए होंगे, ज्यादा नहीं, परंतु फिर 2 दिन के बाद प्रकाशमणि दादी ने, बिफोर 21 को हम लोग पहुंच गए थे यहाँ, तो प्रकाशमणि दादी ने यहाँ से फोन किया कि आप दोनों भी आ जाओ, तो मैं और शील दादी साथ में यहाँ 21 को पहुंचे, अंतिम क्रिया के जस्ट 5 मिनट पहले पहुंचे और अंतिम क्रिया में उस दिन 700 लोग थे। मधुबन में जनवरी में 700 लोग माना बहुत। तो अंतिम क्रिया हुई, हमने देखा सब ने ये इंद्रप्रस्थ और ट्रेनिंग सेंटर के आसपास उसी एरिया में सब खड़े हो गए थे और हमने देखा कि महेंद्र भाई और ओम प्रकाश भाई और कई भाई रो रहे थे। तो कई भाइयों के आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैंने कहा, मैं समझती हूँ मेरे आंख में से दो आंसू आए होंगे, हमारा प्यार सबके लिए रहा, रिगार्ड सबके लिए रहा, हमारे लौकिक पिता से भी हमारा प्यार था, उनका भी हमारे लिए विशेष प्यार था सब बच्चों में, परंतु हमारा कभी अटैचमेंट किसी से नहीं रहा। दादियां चाहे आई गई, क्योंकि निर्मल शांता दादी जब जा रही थी कलकत्ता जी। तो सभी ने सोचा कि अभी निर्मला को बहुत दुख होगा, परंतु हमने तो कहा एक दादी गई, दूसरी आ गई, पुष्प शांता दादी तो थी ही और प्रकाशमणि दादी आ गई थी, तो हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब बाबा ने हमको लिखा, तुम नष्ट मोहा। तो संजो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो सबके मन में तो ये प्रश्न था कि हमारी मुरलियों का क्या होगा, सेवा का क्या करेंगे। म्यूजियम का मकान तो ले लिया था
जी,
परंतु उसमें म्यूजियम खोलना है या नहीं वो भी सवाल था। तो जब 21 को अव्यक्त बाप दादा ने सारा क्लियर किया कि मुरली चलेंगी, दीदी दादी इंचार्ज रहेंगी, सब बाबा ने क्लियर कर दिया 21 मुरली में, और वो मुरली सुनकर सब हल्के हो गए
जी दीदी।
और ये भी फाइनल किया कि क्यों हम सर्विस रुके, म्यूजियम लिया है, म्यूजियम बनाओ। और फिर दादी ने क्या किया, जो लोग ना भी पहुंचे थे ना, सबको बुलाया, आओ 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 आकर हल्के हो जाओ। तो इस रीति से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। तो दुख तो कईयों को हुआ, परंतु फिर अव्यक्त बाप दादा का संदेश सुनकर सब लाइट हो गए
जी। दीदी, दीदी आपकी यात्रा को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप 71 में विदेश गई, आपके साथ वो पहली यात्रा थी दीदी विदेश की, आपके साथ कौन कौन गए थे और वो पहली यात्रा की क्या अनुभूति रही, जो क्योंकि भारत की संस्कृति अलग, यहाँ का संस्कार अलग, आप सब विदेश सेवा में गए दीदी, तो वहाँ का पहला क्या इम्प्रेशन रहा और किस तरह की सेवाएं वहाँ हुई?
क्या था कि 71 जनवरी में दिल्ली में एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों ने कहा हम सभी भाग लेंगे
जी।
तो जो भी अंग्रेजी जानने वाले थे उन सभी का लेक्चर्स रखा था, मेरा था, मोहिनी मैन का था, जगदीश भाई का था, रमेश भाई का था, सबका था। अब उस कॉन्फ्रेंस में हमको निमंत्रण मिला के न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस जुलाई में होने वाली है। तो यज्ञ ने निर्णय किया कि हाँ क्यों नहीं, अब हम विदेश यात्रा और विदेश सेवा शुरू करें। तो इन्होंने मीटिंग की यहाँ यज्ञ में कौन कौन जाएंगे
जी।
तो मैं यज्ञ में थी तो मैंने अचानक ही दादी से पूछा, दादी कौन विदेश जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रकाशमणि दादी से। तो प्रकाशमणि दादी कहे, तुमको जाना है? मैंने कहा कि मैं जा सकती हूँ और मेरे पिताजी खर्च करेंगे, क्योंकि मैं जब स्टडी करती थी तो हमारे लौकिक पिताजी की इच्छा थी कि मैं विदेश जाकर बड़ी डिग्री लेकर आऊं। पर मैंने कहा कि मुझे गांव में सेवा करनी है, अभी पीएचडी बीएससी एमएससी एमएससी ये बड़ी डिग्री लेकर मैं क्या करूंगी, इसलिए मैंने कहा मुझे विदेश जाने का पोस्ट ग्रेजुएट करने का शौक नहीं है। परंतु मैं जानती थी कि हमारे लौकिक पिता खर्च करेंगे, मैंने कहा हमारे लौकिक पिता खर्च करेंगे। तो उन्होंने ऐसों को चुना जैसे मैं, शिलेंद्रा दादी और रोजी बैन, हम तीनों के लौकिक खर्च कर सकते थे टिकट वगैरह का, और रमेश भाई और जगदीश भाई, तो रमेश भाई भी खर्च कर सकते थे, जगदीश भाई का यज्ञ ने खर्च किया। तो हम पांच जने पहले गए, और उसके जाने के पहले कुछ दिनों के पहले यहाँ छुट्टी लेने आए थे मधुबन में, तो हमको अव्यक्त बाप दादा से मिलन हुआ ब्रह्मा बाबा के कमरे में
जी।
बाबा के कमरे में पांडव भवन में हम पांच जने, रतन मुनि दादी और प्रकाश मुनि दादी, बस सात जनों को बाबा ने एक घंटा मुरली सुना कि क्या तैयारी करनी है, कैसे यहाँ से वाइब्रेशन भेजने हैं और कैसे लौकिक से कनेक्शन रखना है। तो ये पर्सनल भी हमको डायरेक्शन दिया अव्यक्त बाप दादा ने कि अपने लौकिक के साथ कनेक्शन रखना, पत्र व्यवहार करना आदि आदि, क्योंकि लौकिक ज्ञान में नहीं आए। मम्मा बाबा से मिले दोनों हमारे माँ बाप, पर ज्ञान में नहीं। कह गया हमारा बाप कहे कि ओ भगवान भी आकर हमको कहे ना, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और कोऑपरेटिव रहा, हमको छुट्टी दे रहा। तो इसलिए बाबा ने कहा उनके साथ पत्र व्यवहार रखना और ज्ञान देना। तो हम विदेश में भी गए तो ऐसे करते रहे, जैसे मैंने भाषण किया तो एक एक टॉपिक पर एक एक वारी सारा भाषण लिखती थी कि मैंने वहां यहां भाषण किया। तो क्या हुआ कि पांच जने थे, तो हमारा पहला स्टॉप लंदन में था, और लंदन में हम लोग 15 दिन के करीब रहे और वहां प्रोग्राम वगैरह किया। परंतु पहली बार थे, जयंती बहन वहां थी, उसकी माँ वहां थी, और 8-10 स्टूडेंट थे तैयार। तो नेचुरल ये है कि प्रोग्राम में तो थोड़े थोड़े आते हैं, और पांच जने लंदन में रजनी बहन अथवा जयंती के लौकिक माँ बाप के पास रहे, तो हमने देखा कि उन्हों के लिए तो बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि नौकर नहीं और हम सब सीनियर, कौन खाना पकाएगा और कौन बर्तन साफ करेगा, घर साफ करेगा, ये करना। तो हमने सोचा पांच जने तो बहुत है। तो फिर क्या हुआ कि जाने के पहले जगदीश भाई कहे कि हमको यहाँ सेंटर जरूर एस्टैब्लिश करना है, ऐसे थोड़ी हम चक्कर लगा के चले जाएंगे, हमको सेंटर शुरू करना है। तो वहाँ के स्टूडेंट के साथ सबके साथ बैठे और सभी ने वायदा किया कि हम किराया मकान का देंगे। तो इसलिए उन्होंने पत्र लिखा यहाँ दादी प्रकाशमणि को कि हम यहाँ सेंटर खोलेंगे और आप किसी बहन को भेजो। तो हम लोग जब तक वो लोग मकान ढूंढते थे हम अपना टूर चालू किया। दूसरा स्टॉप हमारा न्यूयॉर्क में था, तो वहां भी जैसे बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया था, कहां भी जाओ पहले योग में बैठकर जाओ, और पहले से ही जहां जाना है वहां लाइट हाउस माइट हाउस बन के लाइट भेजो। तो हम लोग वही करते थे, छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम हुए वहां पर भी, कहां हट योगा स्कूल में, इधर उधर पर्सनली मिलने, रेडियो में गए, ये वो ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम चले। और न्यूयॉर्क में हमको फ्लैट किराए पर लेना पड़ा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतना पांच का ग्रुप बहुत बड़ा है, इसलिए मैं और रमेश भाई एक तरफ गए, रोजी बहन और शील दादी दूसरी तरफ गए, और जगदीश भाई अकेले टूर किया आगे के लिए। तो मैं और रमेश भाई वहां जो कॉन्फ्रेंस थी न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में था दूसरे शहर में, वहां हम लोग गए, और वहां से सैन फ्रांसिस्को एलए वहां तक गए। तो जब हम वहां थे एलए में, तो हमको लंदन से पत्र आया कि मकान मिल गया है, आप वापस आओ, एक जन आओ, क्योंकि उन्होंने दादी को लिखा कि हमको टीचर भेजो। दादी ने कहा मेरे पास तो अभी कोई अंग्रेजी टीचर नहीं है, आप पांच में से एक को रहना होगा। फिर हम पांचों ने मीटिंग की, शील दादी कहे मैं नहीं जाऊंगी वापस, तो मेरी माँ, वो क्वीन मदर को आदत थी कान दिलाने की, वो नर्वस हो जाती थी तो कान दिलाती थी, तो कहे मेरी माँ के लिए मुझे जाना पड़ेगा। रोजी बहन भी कहे मेरी माँ भी बीमार है, लक्ष्मणा बहन बीमार थी, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। रमेश भाई कहे मेरा तो बिजनेस है, मुझे जाना पड़ेगा। जगदीश भाई कहे मेरा तो मैगजीन है, मुझे जाना पड़ेगा। बाकी रही मैं मेरा डिस्पेंसरी छोड़ के गई थी मैं मैं दो महीने के लिए कोई बहन को अपना लोकम करके कि हमारी एब्सेंस में तुम हमारी डिस्पेंसरी देखना, उसको बिठा कर गई थी। पर मैंने कहा ठीक है मैं वापस जाएंगी लंदन, तो वहां से सैन फ्रांसिस्को मैं वापस यहाँ आई लंदन, और रमेश भाई उषा बेन भी तब तक पहुंच गई थी जी। तो रमेश उषा साथ में गए अपने अपने स्थान पर, जगदीश भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर ये वो करके गया, और शील दादी और रोजी अपने रीति से गए, और मैं वापस लंदन आ गए।
दीदी आपने बहुत त्याग तपस्या करके सेवाएं वहां बढ़ाई। दादी से एक बार हमने सुना था, दादी जी को माने बड़ी दादी को बाबा ने कहा था कि आपके जैसे 21 कुमारी अगर मिल जाए तो कल स्वर्ग आ जाए, तो क्या अभी तक 20 नहीं मिला है दीदी?
मैं समझती हूँ मेरे जैसी नहीं है कुबारियां बहुत है
दीदी। आपके अंदर ऐसी कौन सी सीक्रेट विशेषता है जो आज तक यज्ञ में आपके जैसे कोई नहीं आई?
बाबा मुझे कहते थे ये बना बनाया फूल है
जी,
क्योंकि बचपन से पवित्रता के, ऑनेस्टी के, सफाई के, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, आज्ञाकारी, ये सब संस्कार हमारे बचपन से थे। इकोनॉमी
दीदी
ऑलराउंडर
जी दीदी, इसी से संबंधित
घर काम में भी हमको सब कुछ आता था
जी दी।
तो इसलिए बाबा मुझे मम्मा का फूल भी कहता था, क्योंकि मम्मा के द्वारा मुझे ज्ञान मिला
जी,
और बना बनाया फूल कहता था
जी।
और शुरू से मेरा बोलना बहुत कम था, तो जब पहली बारी हमारे सेंटर पर उषा बहन आई, उस समय मैं क्लास करा रही थी तो आवाज बड़ा था
जी।
उषा कहे तुम इतने आवाज से बोल सकती है क्या? क्योंकि मैं बोलती कम थी।
दीदी आपने जैसे बताया कि आपके अंदर शुरू से ही बचपन से पवित्रता बहुत रही है, और हम सब भाई बहने जब से आपको देख रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, आप टावर ऑफ प्यूरिटी हैं, पवित्रता के एक प्रकार से स्तंभ हैं। दीदी आपको यंग एज में, जब आप युवा रही होंगे, आप कॉलेज में पढ़े होंगे या विदेश में गए होंगे, कभी कोई ऐसा, हम आपसे, आप छोटे हैं दीदी, माफी के साथ चाहते हैं, जब आपकी कोई आकर्षण कभी मन में, जिसके लिए आपको कोई परीक्षा से गुजरना पड़ा हो, बाबा भी कई बार कहते हैं कि इस पवित्रता की परीक्षा से हर एक को गुजरना पड़ता है, तो आपका कोई ऐसा अनुभव जो हमें आप सुनाना चाहें दीदी।
हमारे घर में शुरू से भी रिवाज था कि लड़कियां किसी लड़के के साथ बात नहीं करती, और बहुत जैसे हम हमारा अंग अंग ढका रहे, ये पहले से ही हमारे घर का रिवाज था। तो समझो मैं मेडिकल कॉलेज में थी, मेरा पार्टनर, क्योंकि एक माइक्रोस्कोप के लिए दो को काम साथ में करना होता
है,
और कॉलेज में ऐसे होता है कि सरनेम अनुसार लड़का लड़की कोई भी है, एक के बाद एक होते। अभी हमारा पार्टनर था भाई, मैं कजारिया वो कामत था, तो वो हमारा पार्टनर था। एक माइक्रोस्कोप यूज करते थे, कभी बातचीत नहीं की, एक साल में हमने कभी बातचीत नहीं की उससे। और यूनिवर्सिटी में भी कई भाई तो होते ही है, कभी किसी से बात नहीं। हमारी दो फ्रेंड्स थी मेडिकल कॉलेज में, बस उसके साथ ही हमारा मिलना जुलना बोलना था। और हमारे भाई के दोस्त होते थे तो कहीं कहीं खेलने के लिए आते थे, तो मैं उनको भाई की दृष्टि से ही देखती थी
जी दीदी।
और एक दोस्त ने प्रपोज भी किया, हमारे माँ बाप को कहा कि मैं उसके साथ शादी करूं, मैंने कहा ये तो हमारा भाई है, हम कैसे शादी करेंगे।
दीदी हम समझ सकते हैं आपके अंदर कूट कूट करके पवित्रता भरी हुई है। डायमंड हॉल में दीदी, जब आपको सभा के बीच में बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया, अपना वरद हस्त आपके सर पे रखा और ज्ञान स्वरूप की जिम्मेवारी दी, उस समय आपकी क्या फीलिंग रही, उस समय क्या अनुभव हुआ दीदी? आप, हम सब देखे थे आपको डायमंड हॉल में।
पहले तो जब बाबा ने बुलाया तो मुझे सरप्राइज हुआ कि मुझे बुलाया, ऊपर जाना है क्या? तो मोहिनी बहन बाजू में बैठी थी, मैंने कहा क्या मुझे जाना है? तो मोहिनी बहन ने कहा जाओ 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 ऊपर जाओ
जी।
और जब, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद एक दो बारी तो बाबा ने कुछ नहीं किया, तो मुझे सरप्राइज हुआ कि बाबा कुछ बोले ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि पर्सनली तो मिलते रहते थे। तो उस दिन तो हमको तो बहुत सरप्राइज हुआ कि बाबा ने हमको कैसे बुलाया है। और नेचुरली है, खुशी तो होती है जब बाबा बुलाते हैं, सर पर हाथ रखते हैं। मैं समझती हूँ मेरे से ज्यादा ज्ञान सरोवर वालों को खुशी हुई, मेरे स्टूडेंट्स को ज्यादा खुशी है। कई लोग कहते थे हाँ आपके ऊपर सर रखा, हमको हमने ऐसे फील किया हमारे ऊपर सर रख हाथ रख रहा है, तो उनको ज्यादा खुशी हुई।
दीदी जैसे आप डायमंड हॉल में या ओम शांति भवन में आप बड़ी बहनें बाबा से मिलते हैं, तो कई बार हम वहां देखते हैं कि जब आप लोग स्टेज पर जाते हैं तो माइक हटा दिया जाता है। ऐसी क्या सीक्रेट बातें आपसे बाबा करते हैं दीदी? वो कौन सा ट्यूशन पढ़ाते हैं आप लोगों को जो हम लोगों को बाद में पता नहीं चलता?
कोई सीक्रेट बात नहीं होती है, यूजुअली सुनाई पड़ता है ना।
कई बार सुनाई नहीं देता दीदी,
कई बार नहीं सुनाई पड़ता है, परंतु यूजुअली तो बातें वही होती है
जी।
और जैसे क्या है कि मेनली बाबा तो जो बातें करते हैं ज्ञान की बातें हैं, बाकी जैसे रमेश भाई वगैरह ब्रिजमोहन भाई है, कुछ प्राइवेट पूछना होता है पूछ लेते हैं, सेवा में क्या करना है क्या करना है आदि आदि, या दादी जान की अपना पूछती है मैं लंदन जाऊं या नहीं जाऊं, या ऐसी ऐसी बातें होती है, कोई इतनी सीक्रेट बातें नहीं होती
जी। दीदी समझ गए दीदी। एक बार हमने कहीं सुना है दीदी कि आपका ट्रिब्यूनल में आपको बैठने का है, कहीं किसी से सुना है दीदी कि धर्मराजपुरी में आप जो टीम रहेगी उसमें आप बैठेंगे तो दीदी आप वहाँ हम लोग को पहचानेंगे और थोड़ा बहुत माफ भी कर देंगे दीदी?
क्या है, बाबा कहते हैं कि धर्मराजपुरी में जब लोगों को साक्षात्कार होगा कि आपने क्या पाप किए हैं, तो उस समय जैसे जूरी होती है ना, दो चार जने जूरी में होते हैं
जी,
कम से कम पांच सात होते हैं, तो जैसे जूरी होती है तो धर्मराज के साथ जूरी भी होंगी जिन्होंने जिसको शिक्षा दी है कि उन्होंने कहा, जैसे हम लोगों ने किसी को शिक्षा दी है कि ये पाप कर्म है नहीं करो फिर भी किया, तो बाबा साक्षात्कार कराएगा कि आपने क्या पाप किया। तो नेचुरली है कि जिस रूप में पाप किया है, जिस जीवन में पाप किया है, तो नेचुरली है तो उसका साक्षात्कार।
वो जूरी में आप रहेंगी दीदी?
मैं एशिया वालों को तो कहती हूँ मैं होंगी ज्ञान सरोवर वालों के लिए मुझे इतना मालूम नहीं एशिया वालों को तो मैं कहती हूँ हाँ मैं होंगी जूरी में।
दीदी हम सब धर्मराजपुरी से सहज रूप से पास हो जाए, किसी प्रकार का सजा हमें भोगना ना पड़े, उसके लिए कोई एकाध बात जो हम सब के लिए प्रेरित करे?
मेन थिंग बाबा कहते हैं कि ज्ञान में आने पहले जो विकर्म किया हमको मालूम है वो तो ज्वालामुखी योग या बिंदु रूप योग से खत्म करना, दूसरा है यहाँ कुछ न कुछ सजा मिल सकती है, तन की बीमारी मन की अशांति धन की कमी आदि आदि हो सकती है, तो ये भी सजा होंगी, बाकी जो पाप रहे होंगे तो उसका धर्मराजपुरी में सबको हिसाब किताब चुक करना, सिर्फ आठ पास ही टोनर होंगे
जी जी,
उसमें मैंने समझती हूँ हम सभी का चांस होगा
हम समझते हैं आप रहेंगे दीदी उसमें
आठ पास भी टोनर होंगे, तो इसलिए मेन बात ये है कि हमें अपने पर ध्यान रखना है कि हम पाप का विनाश पावरफुल योग द्वारा करें, योग हमारा सिर्फ नियम से ना हो पर पावरफुल योग हो, स्पेशली अमृत वेला, और दूसरा हम किसी को तन मन धन मन वचन कर्म से दुख ना देवे, पाप कर्म ना करें, ये अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। कल की मुरली में भी बाबा ने ये बहुत ध्यान खिंचवाया कि पाप कर्म ना करो, अभी जो पाप पिछला है वो चुप्त करो, नया पाप ना करो। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देह अभिमान होगा तो कोई ना कोई पाप होता रहेगा, इसलिए इस पर पूरा अटेंशन।
दीदी आपका आध्यात्मिक जीवन परम आदरणीय दादी जानकी की जगह बहुत लंबा समय बीता, दादी का कोई ऐसा अमिट छाप जो आपके अंदर पड़ी हो जो जीवन में आपको काम आता हो सदैव?
दादी प्रकाशमणि
जानकी दादी,
वो भी हमारा एक बहुत हमको मदद रही, क्योंकि विदेश सेवा में जाने के लिए और विदेश में रहने के लिए दादी का जो सहयोग था, सम्मान था, उसने मदद किया। और दादी जान के उसने संजो उसके पास हम जाते थे मेनली डायरेक्शन लेने के लिए, और दादी की एक कला थी सबको समर्पित कराना, धन धन का जो दादी ने कैसे सदुपयोग करना है, क्योंकि विदेश में भी कई है जब शरीर छोड़ते हैं या जब उसको अपना माँ बाप से कुछ वर्षा मिलता है तो दादी हमेशा राय देती थी 1/3 अपने लिए रखो, 1/3 मधुबन और 1/3 लोकल सेवा के। तो इसलिए उनसे हमने ये कला सीखी कि कैसे लोगों का धन सफल कराना है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम यज्ञ में मदद करें। तो इसलिए ये हमको बहुत अच्छा लगा।
दीदी आपसे तो हम बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। लास्ट में एक प्रश्न दीदी, हम सब युवा हैं ज्ञानपुर निवासी और युवा काल में आए हैं, भले युवा है अभी समय बीत गया तो भी अपने आप को सब युवा समझते हैं, तो ऐसा कोई आस दीदी जो ज्ञानपुर निवासियों के प्रति आपकी है और हम उसको पूर्ण कर सके?
हमारी आस वही है जो बाबा की आस। तो आज बाबा ने कहा कि आप सभी संपन्न और संपूर्ण बाप समान बन जाओ, तो हमारी तो यही आश है कि सब अपने पुरुषार्थ को ऐसा तीव्र बनाएं जो जल्दी जल्दी बाप समान बन जाए।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दीदी जी आपका, इतना अपना कीमती समय हम सबके सामने रखे और बहुत प्रेरित किए हम सबको, आपका जीवन का पूरा वृत्तांत जाना समझा, और कभी समय मिलेगा तो आपको और ज्ञान के गुह रहस्य को जानेंगे। दीदी एक बार पुनः सभी भाई बहनों की तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।